लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानवीय जीवन की कटु सच्चाई यही है कि व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया से विदा लेना ही है। यह सत्य केवल मानव जीवन से संबंधित नहीं है, वरन यह पृथ्वी के हर जीव जंतु, चर अचर सारी चीजों से है। अर्थात जिसे जीवन मिला है उसे एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना ही है। बस यही कि हम में से कोई भी उस दिन को नहीं जानता कि वह हमारे लिए कब, कहां और कैसा आएगा। हमारा बुलावा हम सभी जानते हैं कि निश्चित रूप से होगा, लेकिन हम किस परिस्थिति में, कब और कैसे जाएंगे, हम में से कोई नहीं जानता है। श्रोताओ, 33वें सामान्य रविवार हेतु लिए गए आराधना विधि चिंतन पाठों में हमारा ध्यान दुनिया के अंत की ओर कराया गया है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात का विचार करें कि अपने जीवन के अंत को लेकर हमारे जेहन में कैसे विचार आते हैं। क्या मैं अपने बुलावे हेतु अपने को तैयार पाता हूँ? अपने बुलावे का आलिंगन करने हेतु मैं अपने को किस रूप में तैयार कर रहा हूँ?
कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर ईसा ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य, भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा, आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों और बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से ही अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे, तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे।
श्रोताओ, इस वचन का श्रवण हमें धैर्य पूर्वक अपने जीवन दाता ईश्वर और अपने पड़ोसियों के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहने की कृपा दे, जिससे हम अपने बुलावे के आने पर बिना भय और हिचकिचाहट के अपने को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर सकें।
मन ये अर्पित है, मन भी अर्पित है, सारा जीवन हे प्रभु तुझे समर्पित है।
श्रोताओ, नबी मलाकी के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें दुष्ट व्यक्तियों के विनाश और नेक व्यक्तियों के जीवन का हाल प्रस्तुत करता है। प्रभु का दिन आने पर जो धधकती भट्टी के सदृश है, कुकर्मी और अभिमानी भस्म कर दिए जाएंगे, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। नबी मलाकी कहते हैं कि उनका ना तो डंठल बचेगा और ना ही जड़ें। वहीं वे लोग जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, उन पर धर्म के सूर्य का उदय होगा और उनकी किरणें उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। श्रोताओ, थिसलनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र हमें अपने भौतिक जीवन में काम करने से जी नहीं चुराने, वरन मेहनत से अपने रोज दिन की रोटी कमाने और खाने का आह्वान करता है। संत पौलुस स्वयं अपने बारे में उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने दिनचर्या के कामों को मेहनत से करते हुए अपनी जीविका की रोटी कमाई। अतः वे थिसलनीकी समुदाय हेतु अपने को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते और जीवन में कार्य के महत्व का मर्म समझाते हैं। श्रोताओ, पहले और दूसरे पाठों का निचोड़ यदि निकाला जाए तो हमारे लिए आज प्रभु संदेश यही है कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करने हेतु बुलाए गए हैं, जो कि ईश्वर की नजरों में प्रिय है। ईश्वर से मिला यह जीवन हमसे अच्छे कार्यों को इस जीवन में पूरा करने की मांग करता है, क्योंकि हमारे भौतिक जीवन में किए गए नेक कार्य ही अनंत जीवन में प्रवेश हेतु हमारे सुगम मार्ग बनेंगे और स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोलेंगे। अपने इस मानवीय जीवन में ईश्वरीय योजना अनुरूप भले कार्यों को नहीं करना सुस्त रहने के समान है। सुस्त रहने या कुछ नहीं करने पर हम अपने लिए अच्छी चीजों का दावा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि संत पौलुस कहते हैं, जो कार्य नहीं करते उन्हें खाने का भी अधिकार नहीं है। हमारे अच्छे और भले कार्यों के कारण ही हमारे ऊपर धर्म का सूर्य अर्थात ईश्वर की कृपा बनी रहती है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन के अधिकारी बनते हैं। श्रोताओ, आज का सुसमाचार हमारे लिए यरूशलेम मंदिर के ध्वस्त होने की बात कहता है। यह पुनः सुंदरता से भरे हमारे भौतिक जीवन के अंत की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराता है। दुनिया की चीजें चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन समाप्त हो जाएंगी। यह कैसे होगा और कब होगा, ईश्वर को छोड़ और कोई नहीं जानता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक तरह से कोलाहल होंगे, कई तरह की बातें होंगी और कई तरह के लोग ईश्वर का नाम लेकर दूसरों को दिग्भ्रमित करेंगे, जिसके बारे में यीशु हमें सचेत रहने का आह्वान करते हैं। जीवन के ऐसे उथल पुथल में जो जीवंत ईश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखेगा, साथ ही अपने जीवन में भले कार्यों द्वारा ईश्वर अर्थात सत्य का साक्ष्य देगा, वही ईश्वरीय मुक्ति विधान का भागीदार होगा। श्रोताओ, आज के पाठों का संदेश हमारे लिए यही है कि दुनिया की किसी भी परिस्थिति में ईश्वर हमें अपने ऊपर विश्वास करने और धैर्य में बने रहने का आह्वान करते हैं। हमें आज अपने जीवन में धैर्यवान बने रहते हुए अपने जीवन के अच्छे भले और नेक कार्यों द्वारा ईश्वर की महिमा करने का निमंत्रण दिया जा रहा है, जिसके लिए मुक्तिदाता ईश्वर हमें अनंत जीवन का उपहार देने की प्रतिज्ञा करते हैं। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें जीवन में अपनी तरह धैर्यवान बने रहने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम जीवन के लक्ष्य की ओर विचलित हुए बिना अपने कदम बढ़ा सकें।
तन ये अर्पित है, मन भी अर्पित है, सारा जीवन है प्रभु तुझे समर्पित है।
से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 15 नवंबर को एक वीडियो संदेश प्रकाशित कर लूर्द में गरीबों के लिए गरीब कलीसिया के बुलावे का प्रत्युत्तर देते हुए आयोजित 4 दिवसीय सभा के प्रतिभागियों को अपना संदेश दिया। गरीबों के लिए तीसरे विश्व दिवस के उपलक्ष्य में 17 नवंबर 2019 को फ्रतेलो संगठन ने विश्वासियों को निमंत्रण दिया है कि वे समाज के बहिष्कृत लोगों के साथ 4 दिन व्यतीत करें। इस अवसर पर लूर्द में एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए संत पापा ने याद दिलाया कि जो लोग पीड़ित और उपेक्षित हैं, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर उन्हें प्यार करते और उनकी प्रार्थना सुनते हैं। कैथोलिक कलीसिया 2017 से ही सामान्य काल के 33वें रविवार को गरीबों के लिए विश्व दिवस मना रही है। संत पापा फ्रांसिस ने इसकी स्थापना अपने प्रेरित पत्र मिसरी कोर्टिया मिसेरा के द्वारा करुणा की असाधारण जयंती के समापन को मनाने के लिए की थी। 2019 में गरीबों के लिए विश्व दिवस की विषय वस्तु है गरीबों की आशा कभी नष्ट नहीं होगी। शुक्रवार को प्रकाशित संदेश में संत पापा ने कहा, आप जो निम्न हैं, जो गरीब और कमजोर हैं, आप कलीसिया के खजाने हैं। आप संत पापा के हृदय में हैं, मरियम के हृदय में और ईश्वर के हृदय में हैं। फ्रतेलो संगठन विश्व भर के धर्म प्रांतों एवं संगठनों के सहयोग से कलीसिया में गरीबों की सेवा करना, उनसे मिलना और कलीसिया में उन्हें उचित स्थान दिलाना चाहता है। संदेश में संत पापा ने लोट के तीर्थयात्रियों को प्रोत्साहन दिया है कि वे रोगियों की देखभाल करें। उन्होंने कहा कि कोई भी इतना गरीब नहीं है कि कुछ भी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, प्रेम ने दुनिया को बचाया और ईश्वर चाहते हैं कि हम इसके माध्यम बने जिससे होकर प्रेम प्रवाहित हो। अंततः संत पापा ने कहा कि जब आप तीर्थयात्रा से लौटते हैं तो पहले के समान ना लौटें, आशा के साथ लौटें, अपने आसपास ईश्वर के प्रेम के साक्षी बनें, दुनिया को बताएं कि यीशु ही आपके खजाने हैं, मरियम के साथ चलें ताकि वे आपको ईश्वर की कोमलता के प्रेरित बनाएं। ईश्वर आपको प्यार करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। गरीबों के लिए विश्व दिवस के पूर्व संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार 15 नवंबर को आवासहीन लोगों के ठहरने के लिए एक नए केंद्र का उद्घाटन किया। नया केंद्र संत पेट्रस महाकिर्चघर के प्रांगण से कुछ ही दूर पर असामान्य क्षेत्र में स्थापित है। इस घर में कुछ महीनों पहले धर्म बहने रहती थीं। संत पापा ने इस घर को परोपकार के कार्य में समर्पित करना चाहा, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें आवास की आवश्यकता है और जो बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अतः इस घर की व्यवस्था का भार परमधाम पीठ ने संत इजिदियो समुदाय को सौंप दिया है। वैटिकन में गरीबों के लिए संत पापा की मदद कोष समिति के अध्यक्ष कार्डिनल कॉनराड क्राजेवस्की ने एक विज्ञप्ति जारी कर बतलाया कि दिन और रात स्वागत केंद्र का नाम पलाजो मिलियोरी रखा गया है। मकान में बुजुर्गों एवं विकलांगों के लिए काफी सुविधाएं मौजूद हैं। पहली मंजिल पर एक बड़ा प्रार्थनालय है। सोने के कमरे तीसरे और चौथे मंजिलों में हैं, जिनमें करीब 50 स्त्री और पुरुष ठहर सकते हैं। कार्डिनल कॉनराड ने कहा कि केंद्र की देखभाल आवासहीन लोगों के द्वारा ही किया जाएगा तथा उन्हें वैटिकन द्वारा वेतन दिया जाएगा।
संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 16 नवंबर को ट्वीट प्रेषित कर सभी ख्रिस्तियों को गरीबों के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, आइए हम ईश्वर से कृपा मांगे कि हम गरीबों के क्रंदन को सुन सकें। यही कलीसिया की आशा का क्रंदन है। साथ ही संत पापा फ्रांसिस ने हवाना शहर की स्थापना की 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक वीडियो संदेश भेजा। संत पापा ने कहा कि इन 5 शताब्दियों में कुबा के बच्चों के वर्तमान और भविष्य के निर्माण के लिए कई लोगों ने अपने सपने अपना जीवन का बलिदान किया। इस शुभ अवसर पर संत पापा ने शहर के 3 ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर दिया जो शहर की स्थापना के बाद से 500 साल बाद आज भी खंभे के रूप में खड़ी है। वो है विश्वास, प्रेम और आशा। संत पापा ने कहा कि विश्वास शहर की नींव है और विश्वास उस जीवन को बनाए रखती है जो विकसित हो रही है। विश्वास पोषण करती और बढ़ने में मदद करती है। आप अपने पूर्वजों के विश्वास की गवाही को कभी न भूलें। संत पापा ने ख्रिस्तियों के जीवन में पवित्र यूखारिस्ट की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा, पवित्र यूखारिस्ट समारोह हमें एक साथ लाता है। प्रभु येसु स्वयं उपस्थित रहते हैं और हमसे बातें करते हैं, हमें पोषित करते हैं और हमें दुनिया के लोगों के सामने अपना साक्ष्य देने हेतु कहते हैं। वे हमें अपने विश्वास का साक्ष्य, प्रेम और करुणा के कार्यों को संपन्न करने हेतु भेजते हैं। संत पापा ने प्रेम पर प्रकाश डालते हुए कहा, प्रेम क्यूबा के लोगों की पहचान है और जिसे यीशु की माता मरियम से लिया गया है। माता मरियम हमें सिखाती हैं कि हमें कोमलता और पूरे समर्पण के साथ अपने दैनिक जीवन में प्रेम को बांटना है, उदारता के कार्यों को संपन्न करना है। अंत में संत पापा ने आशा के स्तंभ को रेखांकित करते हुए कहा, क्यूबा के लोग जुबली का समारोह मना रहे हैं। यह आशा को नवीनीकृत करने का एक आधार है। जैसा कि संत क्रिस्टोफर अपने भाइयों और बहनों को अपने कंधों पर ढोए आगे बढ़ा, उन्हें सहारा दिया, उसी तरह आप भी अपने भाइयों और बहनों की मदद करें, उनका सहारा बनें, दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहें। साथ ही संत पापा फ्रांसिस ने 20 से 23 नवंबर तक अपनी थाईलैंड की प्रेरितिक यात्रा से पहले थाईलैंड वासियों के लिए एक वीडियो संदेश भेजा। संदेश में उन्होंने स्वीकार किया कि अक्सर कलह, विभाजन, बहिष्कार का अनुभव करने के बावजूद थाईलैंड ने सद्भाव और एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने हेतु कड़ी मेहनत करने की प्रतिबद्धता दिखाई है कि यह प्रतिबद्धता दुनिया भर के सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो न्याय और शांति से एकजुटता में रहने और मानव परिवार के सच्चे विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। संत पापा ने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान उन्हें थाईलैंड के कैथोलिक समुदाय से मिलने, उनके विश्वास को मजबूत करने और पूरे समाज के प्रति उनके योगदान को प्रोत्साहित करने का अवसर मिलेगा। थाईलैंड में अधिकांश आबादी बौद्ध है। संत पापा ने कहा, मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा अंतरधार्मिक संवाद और भ्रातृत्व सहयोग के महत्व को उजागर करने में मददगार सिद्ध होगी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।